सातवां हामी परिवार। इस परिवार की भाषाएं उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई हैं। इस परिवार की प्रमुख भाषा प्राचीन मिस्री है। इस मिस्री भाषा में कॉप्टिक भाषा का जन्म हुआ था, जिससे तीसरी शताब्दी के अंतर्गत बाइबिल का अनुवाद हुआ था। लीबिया, सोमालीलैंड और इथियोपिया में हामी परिवार की ही भाषाएं प्रचलित हैं। सोमालीलैंड की सोमली भाषा व्यापारियों के बड़े काम की है। इस परिवार की पदरचना उपसर्ग और प्रत्यय के योग से होती है। इस परिवार की एक विलक्षण विशेषता यह है कि संज्ञा का वचन बदलते ही उसका लिंग भी बदल जाता है। जैसे वहाँ माता स्त्रीलिंग है और माताएं पुल्लिंग हो जाता है। एक शेर पुल्लिंग है और बहुत से शेर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आठवां सुडानी परिवार। यह परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इस परिवार के लगभग 400 भाषाएं हैं। इनमें से नाइजीरिया की हाउसा भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे संपूर्ण मध्य अफ्रीका के जनसाधारण की भाषा कहा जाता है। उत्तरी तथा मध्य अफ्रीका के सभी प्रधान नगरों में व्यापार के लिए हाउसा भाषा का ही प्रयोग होता है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः अयोगात्मक हैं। इनमें व्याकरण का संबंध मुख्यतः सुर से माना जाता है। नौवां बंतु परिवार। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका में फैली हुई हैं। इस परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा जंजीबार की स्वाहिली है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर सर्वसाधारण की भाषा मानी जाती है। इसमें साहित्य भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जुलू, काफिर, रुआंदा, उम्बुंदु, हेरेरो और कांगो भाषाएं भी इसी परिवार में आती हैं। इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं। इन भाषाओं में शब्द प्रायः स्वरांत होते हैं और संयुक्त व्यंजनों का अभाव है। दसवां मलय पॉलिनेशियाई परिवार। इस परिवार के अंतर्गत मलाका प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा अफ्रीका के निकटवर्ती मेडागास्कर द्वीप की प्रशांत महासागरीय एवं आग्नेय परिवार की भाषाएं आती हैं। न्यूजीलैंड की भाषा भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। भारत में संथालों एवं कोलों की भाषाएं भी इसी परिवार की हैं। जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों की भाषाओं पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जावा की कवि भाषा और उस भाषा के अधिकांश शब्दों का संबंध संस्कृत से स्पष्ट प्रतीत होता है। इस परिवार की भाषाएं प्रायः अश्लिष्ट योगात्मक हैं। इनकी संज्ञाओं में न तो विभक्तियां लगती हैं, न इनमें लिंग होते हैं और न वचन। केवल उपसर्ग और प्रत्ययों के योग से संज्ञापद बनाए जाते हैं। 11 पापुई परिवार। इस परिवार की भाषाएं न्यूगिनी, न्यू ब्रिटेन के कुछ भाग, राउ, तोलो, तेरनाथ, तिदोर, सोलोमन द्वीप समूह के कुछ भाग में प्रचलित हैं। इस परिवार की भाषाएं प्रायः अश्लिष्ट योगात्मक हैं और इनमें शब्द रचना के लिए उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग अधिक होता है। इस परिवार में लगभग 132 भाषाएं आती हैं, जिनका अभी तक पूर्णतया अध्ययन नहीं हुआ है। केवल न्यूगिनी की मफोर भाषा का अभी तक अध्ययन हुआ है। 12वां ऑस्ट्रेलियाई परिवार। इस परिवार की भाषाएं संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रचलित हैं। इस परिवार की लगभग 100 भाषाएं हैं, जो उत्तरी तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में बोली जाती हैं। आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और इनके साथ साथ उनकी भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। तस्मानिया भाषा इसी परिवार की एक भाषा थी, जो अब लुप्त हो गई है। इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं और इनमें प्रायः अंत में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय परिवार उपनिवेश के कारण अंग्रेजी का भी प्रभुत्व है, जिसे ऑस्ट्रेलिय परिवार की भाषाएं समाप्त होती जा रही हैं। 13 अमेरिका परिवार। इस परिवार की भाषाएं संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप के आदिवासियों में प्रचलित हैं। इस परिवार की भाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। क, कनाडा और संयुक्त राज्य की भाषाएं, जिनमें से अथवस्की, अलगोनकी, होका, यूरोकवा, सियुई आदि प्रसिद्ध हैं। ख, मैक्सिको और मध्य अमेरिका की भाषाएं, जिनमें उज्जेतेक, मय, नहुअत्ल आदि आती हैं। ग, दक्षिण अमेरिका की भाषाएं, जिनमें से अरबक, चिबोचा, करीब, क्विंचुआ आदि प्रसिद्ध हैं। अमेरिका के इन भाषाओं का अभी तक सम्यक अध्ययन नहीं हुआ है, इसी कारण इनका ठीक ठीक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इस परिवार की अधिकांश भाषाएं प्रश्लिष्ट योगात्मक हैं, जिनमें एक ही शब्द पूरे वाक्य का काम देता है। ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा की गणना भी इसी परिवार से की जाती है। इस परिवार की भाषाएं लगभग 1000 मानी जाती हैं, जिनमें से बहुत सी भाषाएं लुप्त हो गई हैं। 14वां अवर्गीकृत भाषाई परिवार। इस परिवार के अंतर्गत संसार की वे भाषाएं आती हैं जिनको किसी परिवार में स्थान नहीं मिला है। इनमें से कई भाषाएं प्राचीन हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं और कुछ अर्वाचीन भी हैं, जैसे क्रीट द्वीप की क्रिटी भाषा, सुमेत्री भाषा, एशिया माइनर की खत्ती भाषा, उत्तरी मेसोपोटामिया की मितन्नी भाषा, पश्चिमी एशिया के आरारात प्रदेश की बन्नी भाषा, रोम साम्राज्य की एत्रुक्सन भाषा, पश्चिमी एशिया माइनर की लीडियन भाषा, काला सागर के समीप की कप्पदोशी भाषा आदि ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। ऐसे ही जापानी, कोरियाई, हाइपरबोरी, लती, बास्क, अंडमनी, करेनी, बारूसाश्की आदि ऐसी अर्वाचीन भाषाएं हैं जो आजकल भी प्रचलित हैं, किंतु उनको किसी परिवार में स्थान नहीं मिला है। भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारत, ईरान एवं यूरोप की विविध भाषाएं आती हैं। इस परिवार की भाषाओं में पारस्परिक पर्याप्त समानता है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ये सभी भाषाएं किसी एक मूल भारोपीय परिवार से निकली हैं अथवा इनका विकास किसी एक ही भाषा से हुआ है। ये सभी भाषाएं जितनी समान दिखाई देती हैं उतनी ही इनमें असमानता भी है। इस असमानता का कारण तो यह हो सकता है कि भाषा और यूरोप का अत्यंत पुराना संबंध रहा है। भारत के आर्य लोग यूरोप में भी आते जाते रहे हैं और यूरोप के निवासी भारतीय आर्यों के संपर्क में पर्याप्त मात्रा में आते रहे हैं, अतः पारस्परिक मिलन एवं आवागमन के कारण इन भाषाओं में समानता का आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी समानता को देखकर इन्हें एक परिवार की भाषाएं मान लिया गया है। इस दृष्टि से डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत समीचीन ज्ञात होता है कि यूरोप से एशिया की ओर आर्य अभियान की कल्पना करने वालों की तुलना में उनका मत अधिक मान्य है, जो मध्य एशिया से उनका यूरोप, ईरान, भारत आदि में प्रसार मानते हैं। मध्य एशिया में भी जो विद्वान पामीर या उसके आसपास के प्रदेश को आर्यों की आदि निवास भूमि मानते हैं, उनका मत सत्य के अधिक निकट है। भाषा विज्ञान और पुरातत्व दोनों ही सत्य की ओर इंगित करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे जनों का अभियान हुआ जो संस्कृत परिवार से मिलती जुलती भाषाएं बोलते थे। इन भाषाओं के संपर्क में बेबीलोन से लेकर मिस्र तक के सभी जन आए। उधर काकेशस, पूरी मध्य तथा दक्षिण यूरोप पर भी इनका प्रभाव पड़ा। स्लाव, जर्मन, ग्रीक, लैटिन परिवारों में जो समानता है उसका कारण उसका संस्कृत परिवार की भाषाओं से संपर्क है। इसी संदर्भ में आपने स्पष्ट लिखा है कि भाषाओं की समानता जन्मजात हो या आवश्यक नहीं, वह अनेक कारणों से भी उत्पन्न होती है। इस समानता के आधार पर किन भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत मानना सही है, किंतु उन्हें एक ही आदि स्रोत से उत्पन्न मानना अनिवार्यतः सही नहीं है। केंटुम एवं शतम वर्ग। भारोपी परिवार को आजकल दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का मूलाधार सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी आस्कोली का एक अन्वेषण है। आस्कोली ने 1870 ईस्वी में संपूर्ण भारोपी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह खोज की कि मूल भारोपी भाषा की कंठ ध्वनियां क, ख, ग, घ कुछ भाषाओं में तो कंठ ही नहीं, जबकि कुछ भाषाओं में उष्म ध्वनि श, स हो गई। इसको स्पष्ट करने के लिए 100 शब्द को मूलाधार बनाया गया। जिन भाषाओं में 100 के वाचक शब्दों में विवृत स या श का उच्चारण क होता है, उन्हें केंटुम वर्ग की भाषाएं मान लिया गया, और जिन भाषाओं में 100 के वाचक शब्दों में से स या श का उच्चारण श या स ही होता है, उन्हें शतम वर्ग की भाषाएं मान लिया गया। जैसे लैटिन में सौ को केंटुम कहते हैं, अतः लैटिन तथा ऐसे ही अन्य भाषाएं केंटुम वर्ग की मानी गई, और संस्कृत में सौ के शतम कहते हैं, अतः संस्कृत तथा ऐसी ही अन्य भाषाएं शतम वर्ग में सम्मिलित की गई। जैसे केंटुम वर्ग, लैटिन केंटुम, ग्रीक हे काटोइन, इटालियन कैंटो, स्पैनिश क्लेटनो, प्राचीन आयरिश केट, गैलिक क्यूट, वेल्श कैंट, ब्रिटन कैंट, तोखारी कंध। शतम वर्ग, संस्कृत शतम, अवेस्ता शतम, फारसी सद, प्राकृत सदम स अ, हिंदी सौ, रूसी स्तो, बल्गेरियन सुतो, लुथवानी शिमताश। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि केंटुम वर्ग की सभी भाषाओं में सौ के लिए प्रयुक्त सभी शब्दों में क ध्वनि विद्यमान है, जबकि शतम वर्ग की सभी भाषाओं में सौ के लिए प्रयुक्त शब्दों में आकर वह श या स हो गई है। पहले विद्वानों का विचार यह था कि पूर्व में व्यवहृत भाषाओं को शतम वर्ग में तथा पश्चिम में व्यवहृत भाषाओं को केंटुम वर्ग में रखा जाना चाहिए, परंतु पूर्व में ही तोखारी एवं हिटाइट ऐसी भाषाएं मिली हैं जिनमें स के स्थान पर क ध्वनि विद्यमान है। अतः अब पूर्व और पश्चिम के आधार पर इन वर्गों का विभाजन करना युक्त संगत नहीं है। क, केंटुम वर्ग की भाषाएं। भारवी परिवार के केंटुम वर्ग में निम्नलिखित छह भाषाएं आती हैं। पहला केल्टिक, दूसरा ट्यूटोनिक, तीसरा लैटिन, चौथा ग्रीक, पांचवा हिटाइट, छठा तोखारी। पहला केल्टिक शाखा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस शाखा के बोलने वाले मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस, स्पेन, एशिया माइनर, ग्रेट ब्रिटेन आदि में रहते थे, परंतु अब आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, मानद्वीप, ब्रिटेनी और कार्नवाल के कुछ हिस्सों में ही इस भाषा शाखा का प्रचार मिलता है। इस शाखा के मुख्य दो भेद हैं, एक का वर्तमान रूप आयरलैंड में मिलता है और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन के स्कॉटलैंड, वेल्स तथा कर्नवाल प्रदेश में प्राप्त होता है। इस शाखा की गाल भाषा, जो पहले रोम के राजा सीजर प्रथम के समय में बोली जाती थी और 280 ईस्वी पूर्व में एशिया माइनर तक फैल गई थी, अब उसके दर्शन केवल कुछ पुराने स्थानों एवं व्यक्तियों के नामों, पुराने लेखकों द्वारा उद्धृत शब्दों, पुराने सिक्कों, प्राचीन लेखों आदि में ही होते हैं, जैसे वह भाषा अब जीवित नहीं है। दूसरा ट्यूटोनिक शाखा, इसे जर्मनिक शाखा भी कहते हैं। इस शाखा के भाषाओं के रूप गॉथिक और नॉर्स भाषाओं से मिलते हैं। यह शाखा बड़ी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी, जर्मन, डच और फ्लेमिश भाषाएं इसी शाखा के अंतर्गत आती हैं। इस शाखा के अंग्रेजी भाषा ने तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। प्राचीन नॉर्स भाषा में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड की भाषाएँ निकली हैं। इस शाखा की प्राचीन भाषा गॉथिक भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किंतु अब उसके रूप केवल एक तिथि पुस्तिका और एक बाइबल के अनुवाद के अंश के रूप में ही मिलते हैं। तीसरा लैटिन शाखा, इसे इटैलिक शाखा भी कहते हैं। प्राचीन रोम साम्राज्य की लैटिन भाषा के कारण इस शाखा का बड़ा महत्व रहा है। वर्तमान यूरोप की सभी भाषाओं पर लैटिन का प्रभाव आज तक विद्यमान है। विज्ञान के अधिकांश अंग्रेजी शब्दावली का निर्माण लैटिन से ही हुआ है। इस लैटिन भाषा से इटली, फ्रांस, स्पेन, रोमानिया और पुर्तगाल की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। इस शाखा की फ्रेंच भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें साहित्य की पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चौथा ग्रीक शाखा, इस शाखा की ग्रीक भाषा केंटुम वर्ग की सबसे प्राचीन भाषा है। यूरोप के सुप्रसिद्ध महाकवि होमर, कृत, इलियड और ओडेसी नामक महाकाव्य इसी प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। सुकरात और अरस्तु के ग्रंथ भी इसी भाषा में मिलते हैं। आजकल यूनान में जो भाषा प्रचलित है वह इसी प्राचीन ग्रीक भाषा से विकसित हुई है। प्राचीन साहित्य एवं संस्कृत की दृष्टि से इस शाखा का अत्यंत महत्व है। पांचवा हिटाइट शाखा, इस शाखा की भाषा हिटाइट का पता 19वीं शताब्दी में चला था, जबकि ह्यूगो विंकलर को एशिया माइनर के बोगाजकुई नामक स्थान पर खुदाई कराते समय कुछ किलाक्षरों में लिखित लेख मिले थे। यह भाषा कुछ अंशों में सेमेटिक परिवार के अधिक निकट है, किंतु इसके सर्वनाम एवं इसकी विभक्तियां लैटिन से भी बहुत कुछ साम्य रखती हैं। इसे कुछ विद्वान हत्ती या खत्ती भी कहते हैं। छठा तोखारी शाखा, इस शाखा की प्रमुख भाषा तोखारी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्वी तुर्किस्तान की तुरफान प्रदेश में विद्वानों कुछ ऐसे ग्रंथ एवं पत्र मिले जो ब्राह्मी एवं खरोश लिपि में थे। प्रोफेसर सिंह ने उनका अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि वह भाषा भारवी परिवार की थी और उसे तोखार जाति के लोग बोला करते थे। इसी प्रकार इस भाषा को तोखारी नाम दिया गया। वैसे यह भाषा यूराल अल्ताई परिवार से बहुत कुछ प्रभावित है। 7वीं शताब्दी के आसपास यह भाषा लुप्त हो गई थी। ख शतम वर्ग की भाषाएं। भारोपी परिवार की दूसरे शतम वर्ग में निम्नलिखित 5 भाषाएं आती हैं। पहला आर्या भारत ईरानी शाखा, दूसरा अर्मेनियन शाखा, तीसरा बाल्टिक शाखा, चौथा स्लाविक शाखा, पांचवा अल्बानी या इलीरियन शाखा। पहला आर्या भारत ईरानी शाखा। यह शाखा 3 उपशाखाओं से में विभक्त है। पहली में भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं, दूसरे में ईरानी भाषाओं की गणना होती है और तीसरी में दरद और पैशाची भाषाएं आती हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभ्रंश आदि प्राचीन भाषाएं तथा हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, बिहारी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं आती हैं। ईरानी भाषाओं के अंतर्गत अवेस्ता, फारसी, पहलवी, पश्तो, बालोची तथा पामीरी भाषाओं की गणना की जाती है। दरद और पैशाची भाषाओं के अंतर्गत दर्दी, पैशाची, काफिरी और खोवारी भाषाएं आती हैं। इनमें से संस्कृत भाषा शब्द अधिक प्राचीन है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत में ही मिलता है। चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषध चरित्र, शिशुपाल वध आदि ग्रंथ संस्कृत के गौरव ग्रंथ कहलाते हैं। पाली में लिखित बौद्ध ग्रंथ विश्व की अद्भुत रचनाएं हैं। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता की अनुपम देन है। फिरदौसी का शाहनामा फारसी का द्वितीय ग्रंथ है। पैशाची की बृहत कथा इस शाखा की अनुपम रचना है। इस प्रकार यह शाखा शतम वर्ग की सर्वोत्कृष्ट शाखा है, जो साहित्य एवं संस्कृति की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा आर्मेनियन शाखा। इस शाखा के अंतर्गत आर्मेनिया की भाषा आती है। यह ईसा से 700-800 वर्ष पूर्व से प्रचलित है। इसमें ईरानी शब्दों की अधिकता है। इसके अतिरिक्त इसमें काकेशी और सामी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। इस भाषा में अधिकतर ईसाई धर्म संबंधी साहित्य मिलता है। यह भाषा काला सागर तथा काकेशस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण प्रदेश में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। इस्तांबुल की भाषा भी आर्मेनिया की ही है। जैसे भारत में धार्मिक कर्मकांडों के अवसर पर संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, वैसे ही आर्मेनिया के पुरोहित आज भी धार्मिक अवसरों पर आर्मेनिया की प्राचीन भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यह भाषा बाल्टोस्लाविक और आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी है। तीसरा बाल्टिक शाखा। एक शाखा के अंतर्गत प्राचीन प्रशियन, लिथुआनी और लैटी भाषाएं आती हैं। प्राचीन प्रशियन भाषा जर्मन के एक प्रदेश प्रशिया में बोली जाती थी, किंतु 17वीं शताब्दी में वह लुप्त हो गई। लिथुआनी भाषा लिथुआनिया प्रदेश में बोली जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का बड़ा महत्व है, क्योंकि लिथुआनी भाषा प्रारंभ से ही पूर्ण श्रेष्ठ भाषा है और पिछले 4000 वर्षों से इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि लिथुआनिया प्रदेश अत्यधिक शीत, गहन जंगल, दलदल तथा यातायात के साधनों के अभाव के कारण अन्य देशों से पृथक ही रहा है और इस पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़े हैं। लैटी भाषा लटविया राज्य में प्रचलित है, जो आजकल रूस में सम्मिलित है। इन भाषाओं का साहित्य समृद्ध नहीं है और 16वीं शताब्दी से पूर्व का साहित्य इनमें तनिक भी नहीं मिलता। चौथा स्लाविक शाखा। इस शाखा को 3 उपशाखाओं में विभक्त किया जा सकता है, पूर्वी स्लाविक, पश्चिमी स्लाविक और दक्षिणी स्लाविक। पूर्वी स्लाविक शाखा के अंतर्गत महारूसी, श्वेत रूसी और लघु रूसी भाषाएं आती हैं। पश्चिमी स्लाविक शाखा में पोली, चेक और स्लोवाक भाषाएं सम्मिलित हैं तथा दक्षिणी स्लाविक शाखा में अंतर्गत बुल्गारी, सर्वोक्रोति और स्लोवेनी भाषाओं की गणना की जाती है। सोवियत संघ में महारूसी भाषा की शासन, शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावली आदि में प्रयुक्त होती है। रूसी साहित्य 18वीं शताब्दी से अत्यधिक विकसित हुआ है। पोली पोलैंड की भाषा है, इसमें अत्यधिक साहित्य अच्छा मिलता है। चेक भाषा चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित है, इससे भी प्राचीन साहित्य अच्छा नहीं मिलता। 19वीं शताब्दी से ही इसमें अच्छी साहित्य रचना आरंभ हुई है। बुल्गारी भाषा बहुत प्राचीन है। पांचवा अल्बानी शाखा, इसे इलीरियन शाखा भी कहते हैं। यह एड्रियाटिक सागर के पूर्ववर्ती पहाड़ी प्रदेश में प्रचलित है। इस शाखा की एकमात्र भाषा अल्बानी भी शेष रह गई है। अल्बानी भाषा पर विदेशी प्रभाव अत्यधिक पड़ा है, इसी कारण से इसे कुछ विद्वान भारतीय परिवार की भाषा नहीं मानते। इसमें 17वीं शताब्दी से पूर्व का साहित्य नहीं मिलता। इस पर स्लाविक, वेनिस और तुर्की भाषाओं का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस भाषा में लोकगीत ही अधिक मिलते हैं। भारत के भाषा परिवार। भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसमें विविध बोलियां एवं भाषाएं प्रचलित हैं, जो किसी एक परिवार की नहीं अपितु विविध परिवारों की हैं। वैसे संसार में भारत की प्रसिद्धि के कारण आर्य भाषाएं एवं द्रविड़ भाषाएं हैं, किंतु इन दोनों भारत भाषा परिवारों के अतिरिक्त भारत में और भी कई परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, जो कहीं आदिवासियों में मिलती हैं, कहीं पहाड़ी प्रदेशों में रहने वालों में पाई जाती हैं, कहीं इस्लाम धर्मी लोगों में मिलती हैं और कहीं अंडमान निकोबार आदि छोटे छोटे द्वीपों में पाई जाती हैं। इन सभी भाषाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि भारत में निम्नलिखित 6 परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं। भारोपी परिवार। पहला, जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि भारत में भारोपी परिवार की आर्य भाषाएं संपूर्ण उत्तरी भारत में फैली हुई हैं, जिनमें से प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं आती हैं और आधुनिक आर्य भाषाओं में से लहंदा, सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, भीली, खानदेशी, पश्चिमी हिंदी यानी ब्रज और खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी यानी अवधी, भोजपुरी, पहाड़ी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया, मराठी आदि प्रसिद्ध हैं। इस परिवार की ईरानी शाखा की फारसी भाषा भारत में मुगल साम्राज्य तक पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही। आजकल भी बहुत से पुराने शिक्षित भारतीय फारसी को भली प्रकार समझते हैं और प्राचीन फारसी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसी ईरानी शाखा की दूसरी बालोची भाषा पश्चिमी सिंध और बलूचिस्तान में बोली जाती है। ऐसी शाखा के अफगानी या पश्तो भाषा पश्चिमी सीमांत प्रदेश में प्रचलित है। इस परिवार की दर्द या पैशाची भाषा गिलगित की घाटी में तथा बलूचिस्तान से तंगीर नदी तक के भूभाग में बोली जाती है। दर्द की एक शाखा कश्मीरी भाषा है, जो कश्मीरी प्रदेश में प्रचलित है। इस प्रकार भारोपी परिवार की कई भाषाएं भारत के उत्तरी भाग में प्रचलित हैं। दूसरा, द्रविड़ परिवार। यह भाषा परिवार भारत के संपूर्ण दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इस परिवार के 4 भाषाएं प्रमुख हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल इन सभी से प्राचीन और संपन्न भाषा है। यह वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त उत्तरी श्रीलंका में भी यह भाषा बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। इसमें अत्यंत समृद्ध उच्च कोटि का साहित्य मिलता है। परिष्कृत तमिल भाषा के 2 रूप प्रचलित हैं, शेन और कोंडुम। इनमें से शेन तमिल का सर्वाधिक प्रचार सभ्य लोगों में है और यह साहित्य की भाषा है, जबकि कोंडुम तमिल प्रायः बोलचाल की भाषा है। दूसरी, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसमें भी पर्याप्त उच्च कोटि का साहित्य मिलता है, किंतु वह तमिल के बाद का है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। इसका आधुनिक साहित्य उच्च कोटि का है। इस पर संस्कृत का अधिक प्रभाव है। तीसरी, कन्नड़ भाषा का क्षेत्र कर्नाटक प्रदेश है। इसकी लिपि बहुत कुछ तेलुगु से मिलती है और इसकी भाषा तमिल के साथ साम्य रखती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इसका प्राचीन रूप 450 ईस्वी के हलमिदी शिलालेख में दृष्टिगोचर होता है। चौथी, मलयालम भाषा। केरल प्रदेश में प्रचलित है। इस भाषा को तमिल की पुत्री माना जाता है, क्योंकि ईसा के 9वीं शताब्दी के आसपास यह भाषा तमिल से पृथक हुई थी। इसके शब्दावली में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। इसका प्राचीन साहित्य लगभग ईसा की 13वीं शताब्दी तक का ही मिलता है। इसके बोलने वालों की संख्या 2.25 करोड़ है। इसका आधुनिक साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। इनकी अतिरिक्त इसी द्रविड़ परिवार की तुकु, काडंगड़ु, टोडा, गोंडी, कुरुख, कुई, कोलामी आदि बोलियां भी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। इस प्रकार द्रविड़ परिवार की भाषाएं भी भारत के विस्तृत भूभाग में फैली हुई हैं। तीसरा, आग्नेय या ऑस्ट्रिक परिवार। इस परिवार की खासी, निकोबारी, मोनक्वेर तथा मुंडा भाषाएं भारत में प्रचलित हैं। इनमें से खासी भाषा असम की खासी और जयंतिया पहाड़ों में बोली जाती है। निकोबारी भाषा बंगाल की खाड़ी में स्थित निकोबार द्वीप में प्रचलित है। मोन खमेर भाषाओं में से मोन भाषा का मर्तबान की खाड़ी के चारों ओर प्रचलित है और खमेर भाषाएं बर्मा और श्याम के सीमांत प्रदेश में बोली जाती है। इस परिवार के सबसे प्रमुख शाखा मुंडा भाषाओं की है, जब मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर से लेकर पश्चिमी बंगाल एवं बिहार से होते हुए उड़ीसा के गंजम जिले तक फैली हुई है। इस भाषा शाखा के 2 भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्वी वर्ग और पश्चिमी वर्ग। पूर्वी वर्ग के अंतर्गत संथाली, मुंडारी, भूमिज, कोडा, हो और कोरमा बोलियाँ आती हैं। इनमें से संथाली और भुंडारी प्रमुख बोलियाँ हैं। पश्चिमी वर्ग में कुरकू, खड़िया, कनाबरी, जुआंग और शबर बोलियाँ आती हैं। इनमें से शबर बोली का उल्लेख तो रामायण, कादम्बरी आदि संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। ये मुंडा भाषाएँ प्रत्यय प्रधान हैं और इनमें क्रियाओं की बहुलता है। चौथा, तिब्बती चीनी परिवार। भारत में इस परिवार की थाई चीनी शाखा से संबंधित कई बोलियाँ उत्तर पूर्वी असम और बर्मा में बोली जाती हैं। इनमें से प्रमुख बोलियाँ हैं शान, आहोम और खामती। शान बोली उत्तरी बर्मा में प्रचलित है। शान की ही एक उपशाखा आहोम है जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में असम के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इस आहोम का ही परिवर्तित रूप आसाम या आसाम है जो आजकल असम कहलाता है। यह बोली असम के पुरोहितों में ही जीवित है तथा फूकन, बरुआ आदि नामों से भी यह बोली चिन्ह मिलते हैं। शान की ही एक उपशाखा खामती है जो पूर्वी असम में प्रचलित है। यह बोली अभी तक जीवित है और इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 5,000 है। इसके अतिरिक्त तिब्बती या भोटिया उपशाखा के दो बोलियाँ अभी तक भारत की उत्तरी सीमा में प्रचलित हैं, जिनके नाम है लद्दाखी और बाल्ती। लद्दाखी लद्दाख में बोली जाती है और बाल्ती बालिस्तान में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त नेपाल की तीन नेवारी एवं भूटान की भूटानी बोलियाँ भी इसी परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार तिब्बती चीनी परिवार की कई बोलियाँ हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में भारत के उत्तरी सीमांत पर प्रचलित हैं। पांचवा, सामी परिवार। इस परिवार की सुप्रसिद्ध अरबी भाषा भारत के मुसलमानों की धार्मिक भाषा के रूप में प्रचलित है। ऐसी भाषा में इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ कुरान है, जिसका पठन पाठन बड़ी लगन एवं श्रद्धा के साथ नित्य प्रति मुसलमानों में होता है। नित्य प्रति प्रातः अजान के समय इसी भाषा का उच्चारण करते हुए प्रत्येक मस्जिद में छत या किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर नमाज की सूचना दी जाती है। इसी भाषा का प्रयोग विवाह आदि संस्कारों के समय किया जाता है। मुसलमानों के धर्म विश्वास का मूल मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इसी अरबी भाषा में है। इतना ही अलजेब्रा, सिफर, जीरो, मैगजीन आदि जितने भी अरबी शब्द आजकल भारतीय भाषाओं में आ गए हैं। इस प्रकार भारत के जिस भूभाग पर भी इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान लोग रहते हैं, वहाँ स्वामी परिवार की अरबी भाषाओं का प्रयोग देखा जाता है। छठा, अन्य वर्गीकृत भाषाएँ। इसके अंतर्गत भारत में कुछ ऐसी भाषाएँ भी मिली हैं जिनको अभी तक किसी भाषा परिवार में विभाजित नहीं किया गया है। जैसे एक तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भाषा, जो सिंध और पंजाब में खुदाई के अवसर पर मिली है और भारत की अत्यंत प्राचीन भाषा है। दूसरी बरुश्की भाषा, जो कश्मीर के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रचलित है। तीसरी अंडमानी भाषा, जो अंडमान निकोबार द्वीप में बोली जाती है।